जैसा कि आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, जिसको हिंदी में गति के नियम कहते हैं
जी।
और ये बहुत ही जो जब हम किसी फिजिक्स में पढ़ते हैं तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये मैकेनिक्स के अंदर आता है जिसमें हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं और उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें मास होता है, वेलोसिटी होती है। और हमने अक्सर देखा होगा कि जब कोई चीज़ किसी समतल पर या किसी प्लेस पर रखी है तो वो मूव नहीं करती है, तो उसको मूव करने के लिए हमको एक फोर्स की ज़रूरत होती है। तो फोर्स मतलब कोई भी चीज़ पर हम उसमें इस तरह से धक्का लगाएं या उसको खींचें या उसको हम उसकी पोजीशन में अंतर कर दें, तो वो चीज़ सिंपल भाषा में कि कोई वस्तु को हम अगर गति में लाना चाहें तो उसको ओरिजिनल पोजीशन से उसको डिस्प्लेस करना होगा। अगर वो उससे वहाँ पर डिस्प्लेस नहीं हो रही है तो इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन सफिशेंट अमाउंट में नहीं लग रहा है, जिसके कारण उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है। तो जैसे आपने उदाहरण के तौर पर आप एक दीवार को धक्का मारें तो दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी, फोर्स तो हम लगा रहे हैं लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट आगे नहीं हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हम बोलते हैं कि फोर्स एक ऐसे है जिसमें एक पुश और पुल जिसको बोला जाता है कि हम अगर किसी वस्तु में खिंचाव के कारण उसके विस्थापन में चेंज कर दें, उसकी पोजीशन पर चेंज कर दें, तो लगने वाला वो जो धक्का होता है उसको फोर्स कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। अब हर एक वस्तु जिसको हम अगर धक्का भी दें तो वो रेस्ट करती है, वो नहीं चाहती है कि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटें। जैसे आप सुबह सो रहे हैं, आपको उठने का मन नहीं है और आपको धक्का लगाया जा रहा है और आप रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको नींद आ रही है, तो ये जो प्रॉपर्टी है फोर्स की, इसी को इनर्सिया कहा जाता है। इनर्सिया जिसको हम हिंदी में जड़त्व बोलते हैं,
स्टेट ऑफ रेस्ट।
हाँ, तो उसमें कोई भी जब वस्तु है उसका विरोध करती है कि हम अपनी पोजिशन से चेंज नहीं होंगे, तो उसके जो ऑब्जेक्ट के इस प्रॉपर्टी को हम इनर्सिया कहते हैं। और इनर्सिया को नापने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका आप मास को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका इनर्सिया होगा। तो इसी तरह आपने उदाहरण के तौर पर देखा होगा कि बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं कि अगर हम बस में जा रहे हैं और बस में आगे से ब्रेक लगाया तो हम कहाँ की ओर गिरते हैं, आगे की ओर तुरंत गिर जाते हैं। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि बस के फ्लोर पर तो आपका पैर है और बॉडी का जो ऊपरी सिरा है वो हवा में है, तो जब ब्रेक लगता है तो आपने देखा होगा कि पैर जो है जहाँ पर हमारा टच हो रहा है फ्लोर से वो उसको रेस्ट करता है, इसलिए वो अपनी जगह पे पैर रहता है, लेकिन ऊपर वाली बॉडी ब्रेक की दिशा में आगे गति में चली जाती है, तो हम इसलिए आगे की ओर झुक जाते हैं। या इसी तरह आपने देखा होगा जब कार में आप जाते हैं, टर्न लेते हैं तो बाईं तरफ गिर जाते हैं या दाईं तरफ गिर जाते हैं, तो ये सब इनर्सिया का एग्जाम्पल है जिसको एक सिंपल भाषा में समझा जा सकता है। तो जब कोई वस्तु कांटेक्ट में होती है और जब उसका एक हिस्सा गति में आ जाता है, दूसरा हिस्सा गति में नहीं आता है, तो हम आगे की ओर गिरते हैं या पीछे की ओर गिरते हैं। तो इस तरह हम सिंपल शब्दों में जड़त्व को या इनर्सिया को समझ सकते हैं। अब फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट में किस तरह के चेंज आते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि तीन तरह के जो चेंज आ सकते हैं कि हम किसी बॉडी में फोर्स लगाएं तो उसका शेप बदल सकता है। जैसे आप बैलून को दबाएं तो बैलून का थोड़ा शेप बदल जाएगा, या किसी फॉर्म को आप दबाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी फोर्स लगाने की है कि उसका शेप चेंज हो जाता है। दूसरा, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाता है, कोई चीज़ रेस्ट में है उसमें फोर्स लगाया तो वो एक्सेलरेशन उसमें आया और वो आगे मोशन में चीज आ जाती है। और तीसरा क्या है कि वो अपने एक्सिस के अराउंड घूमने लगती है, तो जिसे हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। तो फोर्स की प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें इस तरह के तीन चेंजेस आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई वस्तु में हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें के वेग में परिवर्तन होता है, वेग मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। तो इससे ये समझ में आया कि जरूर मास मतलब इनर्सिया की बात हो रही है, मास और उसके वेलोसिटी में कोई ना कोई एक संबंध है जिसको हम मेजर करना चाहते थे। यही साइंटिस्ट में जब गैलीलियो ने सबसे पहले देखा तो उसने ये नोटिस किया कि मास और उसके वेलोसिटी में कुछ रिलेशन है या नहीं है। बाद में इसको न्यूटन ने अपने ऑब्जर्वेशन से पाया। न्यूटन ने जब देखा कि सेव ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उसके दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ ये क्यों गिरा, ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिरा, तो उसने देखा कि वो ग्रेविटी के कारण कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। गैलीलियो ने भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि एक प्लेन बनाया और एक प्लेन से एक बॉल को नीचे की ओर ढकेल दिया तो बॉल स्पीड से नीचे की ओर आई और उसी समय पर उन्होंने दूसरी ओर भी एक प्लेन बना दिया तो बॉल इधर से नीचे की ओर आई और ऊपर से ऊपर की ओर चढ़ गई, लेकिन दोनों जो प्लेन की हाइट थी वो दोनों बराबर रही। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है तो एक्सेलरेट हो जाती है, उसमें गति आती है, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो डी एक्सेलरेट हो जाती है। जिसे हम हिंदी में मंदन बोलते हैं इसे त्वरण बोलते हैं, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, इस तरफ इसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इस तरह गैलीलियो ने इसका सबसे पहले नोटिस किया और न्यूटन ने उसको आगे कॉम्प्लीमेंट किया और यहीं से ही गति के नियम की शुरुआत हुई। यहीं से न्यूटन ने गति के नियमों को एक मैथमेटिकल, गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने उसको मैथमेटिकल प्रूफ कर दिया। तो न्यूटन ने जो गति के जो नियम दिए उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, यानी कि तीन गति के तीन नियम होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि उसमें कहा जाता है, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, कि इनर्शिया जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। अगर कोई चीज़ पड़ी है तो पड़ी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा जब तक उसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो इसको ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पहले भी बताया कि बस में आप जाते हैं, ब्रेक लगाने से आप आगे की ओर गिर जाते हैं, या कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मोड़ आने पर आप जहाँ जिस जगह में गाड़ी मुड़ती है उसके दूसरी तरफ आप गिर जाते हैं। तो इस तरह हम न्यूटन के फर्स्ट नियम को डिफाइन करते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की बात ये भी है कि एक फ्रेम, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की भी बात होती है, कि आप देखते हैं कि एक चीज दूसरे के रिलेटिव है। गति कौन कर रही है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी तो खड़ी हुई है लेकिन बगल से एक गाड़ी चलती हुई जाती है तो आपको लगता है कि आपकी गाड़ी भी चल रही है। तो ये इसमें डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। गति, आप भी गति कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी में हर चीज इस यूनिवर्स में मूव कर रही है, तो आप भी गति करते हैं और उसके दूसरा आपके जो ऑब्जेक्ट है वो भी गति करता है। डिपेंड ये होता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हुए हैं। तो इसको इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और गति में जब वस्तु को देखा जाता है तो हर एक गति जो मोशन होता है वो एक दूसरे के रिलेटिव यानी कि सापेक्ष होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हुए हैं। और इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कि मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम का भी जो फिनोमेना है वो फर्स्ट लॉ से ही आया है, कि जब कोई चीज मूव करती है तो मैंने बताया कि उसमें कोई ना कोई संबंध रहता है। तो जैसे मास, बाद में उसको मैथमेटिकल प्रूफ भी किया गया कि मास और इनटू वॉल्यूम वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो ये इसको जब इसको डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली पी इक्वल टू एम इंटू वी, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, कि अगर कोई चीज गतिमान करती है तो उसका मास और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह हम कहते हैं कि कोई भी चीज जा रही है तो उसका जो प्रोडक्ट है मास और वॉल्यूम ये हमेशा बराबर रहता है। जैसे इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब कोई भी चीज को फोर्सफुली तोड़ा जाता है तो वो दो टुकड़े में डिवाइड हो जाता है। तो जब हमने तोड़ा तो उसका मास भी दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया और वॉल्यूम भी वेलोसिटी भी उसकी अलग अलग होगी। लेकिन पहले की वेलोसिटी देखी जाए, सपोज करो ए ऑब्जेक्ट है टूटने के पहले, तो हम बोलेंगे मास इंटू वॉल्यूम, उसका एक प्रोडक्ट आएगा। उसके बाद सपोज उसको दो टुकड़े में हो गया तो M1 और V1, उसकी वेलोसिटी होगी प्लस एम टू वी टू। तो जो पहले टकराने के पहले का जो मोमेंटम है और टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो हमेशा बराबर रहेगा। तो इसीलिए जब हम आपने देखा होगा कि कोई चीज हम जब तक ये मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, तो आपने देखा होगा कि जब एक ट्रक सपोज करो चल रहा है और एक ट्रक खड़ा हुआ है, चलने वाले ट्रक के सामने अगर आ जाते हैं आप तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। एक खड़ा ट्रक आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मास तो है, मास इनटू वॉल्यूम जो है, जो वो जो आपसे टकरा रहा है वो थोड़ी देर के लिए आपके टच में आएगा और आपको ज़्यादा इम्पैक्ट लगेगा और खड़े ट्रक को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आगे जाके इसको कैलकुलेट किया गया कि फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, कि जब फोर्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, तो इसमें डिफाइन किया गया कि आपकी पहले की वेलोसिटी क्या थी, बाद की वेलोसिटी क्या थी, उसको आप माइनस कर दीजिए और कितने समय तक वो टकराए आपस में उसका टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको एक इम्पैक्ट पता चलेगा। इम्पैक्ट क्या है? थोड़ी देर के लिए लगने वाला एक बल है जिससे आपको पता चलता है कि आपको चोट कितनी लगी या कितना नुकसान पहुंचा। तो इस तरह हम मोमेंटम को और फोर्स को आपस में डिफाइन कर सकते हैं और चेंज इन मोमेंटम को ही फोर्स कहा जाता है। और इस तरह जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हमने कई तरह से डिफाइन किया गया। और अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे जब न्यूटन ने देखा कि चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स है, तो उसको उन्होंने और आगे डिफाइन किया। तो उसके द्वारा जो फार्मूला निकल के आया, जिसको सभी लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है चेंज इन मोमेंटम से चेंज इन वेलोसिटी आता है। तो इस तरह हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब कि बाहर से कितना आपका फोर्स लग रहा है और कितने समय तक लग रहा है, ये डिपेंड करता है फोर्स को कैलकुलेट करने में, एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट करने में। तो जहाँ पर जिसका एफ इक्वल टू एम ए की बात करें, तो इसका मास है वो केजी में मेजर किया जा सकता है और ए का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इसका जो यूनिट है जिसको हम इकाई बोलते हैं वो न्यूटन है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें एक्टिविटी भी हो सकती है कि जब हम जानते हैं कि एम के एस ऐसा यूनिट सिस्टम में कि मास का जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, और मास के जो आपने देखा किलोग्राम होती है, इसी तरह आप समय को नापेंगे तो सेकंड में नापेंगे। तो आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि डिस्टेंस को आप नापते हैं किलोमीटर में, तो मैं आपसे बोलूं कि एक 10 किलोग्राम वजन कितना होता है, तो आप विजुलाइज तुरंत कर लेते हो कि 10 किलोग्राम वजन बहुत होता है और ये एक आइडिया लगा लेते हो। इसी तरह एक सेकंड कितना होता है उसके बारे में भी आपको पता है, एक सेकंड कितना है, एक घंटा कितना है, विजुलाइज करा लेते हैं इसी तरह डिस्टेंस का भी हमें पता चल जाता है। अब बात आती है न्यूटन, न्यूटन को कैसे समझा जाए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक न्यूटन के फोर्स से मुझे धक्का मारिए, तब आपके क्या विजुलाइज कर रहे हैं, कितना होगा एक न्यूटन और इसको कैसे मेजर करेंगे। तो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है, आप अपने किसी साथी से कहिए एक आप मुझे एक न्यूटन के फोर्स से धक्का मारिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फोर्स के एफ इक्वल टू एम ए और इसमें आपकी यूनिट उसका न्यूटन है। तो इसको समझने के लिए हम सिंपल सा पहले तो फोर्स को समझना होगा कि अगर फोर्स इक्वल टू एम एफ इक्वल टू एम ए है, तो एम को 1 केजी ले लीजिए, तो वो हो गया 1 केजी, एक्सेलरेशन भी 1 ले लीजिए, तो फोर्स हो गया 1 न्यूटन, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 न्यूटन। अब इसको आप डिफाइन करिए कि 1 केजी के ऑब्जेक्ट पर आप इतना फोर्स धक्का लगाएं जिससे कि बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाए, वो 1 न्यूटन होगा। तो सिंपल से हम पता कर सकते हैं कि 1 न्यूटन क्या है, कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर हम इतना फोर्स लगाएं कि उसमें जो एक्सेलरेशन गति में आ जाएगा तो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। अब सपोज आपका वजन 60 kg है, अब एक्सेलरेशन लेना है, आपको फोर्स आना चाहिए 1, तो एक्सेलरेशन होगा 1/60। तो क्योंकि 60 × 1/60 = 1 न्यूटन, तो अब आप इतना पुश करिए कि 1/60 m/s² के फोर्स से आपको धक्का लगे। लेकिन आप उसको फील करेंगे, आप उसको समझेंगे, तो आप 1 टच के बराबर 1 न्यूटन होता है। जैसे आप सिंपल 1 टच करेंगे वो दैट इज़ कॉल्ड 1 न्यूटन। अब इसको आप विजुलाइज कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया जो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप एक मिठाई की दुकान पर जाइए, वहाँ पर आप जो मिठाई जो वेट करते हैं उसमें जो उनका पैन होता है, वेट पैन होता है, उसमें आप एक उंगली से ऊपर टच करिए और टच करने के बाद वो निडल 100 ग्राम तक आ जाए। मतलब F=ma की जगह हम एक्सेलरेशन के वहाँ पर लग रहा है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो F a की जगह वो जी हो जाएगा। जी आप एक मान के चलिए 10 m/s² 9.8 होता है, आप 10 ले लीजिए। तो वहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो एक फ्राई पैन पे और उसमें वेट पैन पे आप टच करेंगे, आपकी निडल 100 ग्राम तक चली जाए, तो इसका मतलब आपने 1 न्यूटन फोर्स लगा लिया। तो इस तरह आप 1 न्यूटन के फोर्स को भी विजुलाइज कर सकते हैं, और इससे आपको एक क्लू मिलता है कि आप फर्दर जो भी स्टडी करें, जो भी यूनिट के बारे में पढ़ें, उसके बारे में विजुलाइज करना आपको आना चाहिए। जनरली क्या होता है कि आप थ्योरेटिकल तो बहुत प्रूफ कर देंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। अगर ये जाके फ्यूचर में जब आप इस फील्ड में रहते हैं या इंजीनियरिंग में जाते हैं या कोई भी काम करते हैं, सपोज़ आपसे कहा जाए कि इसको इतने वेट को आप उठाइए, इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 10 न्यूटन फोर्स कितना होता है
जी।
तो जो हमारे सिलेबस हैं जिसमें पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर मिसिंग है, जिसमें हम यूनिट को एक्सप्लेन उस तरह से नहीं करते हैं प्रैक्टिकली। तो इस तरह से आप उसमें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं
जी।
और इसका जो मैंने 1 न्यूटन को आपको बहुत ही डिटेल में आपको बताया
जी।
अभी तक जो आपने जो बातचीत हुई है उसमें आपने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं न्यूटन के 3rd law of motion की ओर, और ये जो नियम हमको बताता है कि जो एवरी फोर्स, जो भी एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि एक बॉडी दूसरे, अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो दूसरी बॉडी भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाती है। तो इस तरह इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसमें आपने देखा होगा कि जो हम सुबह शाम अपनी चेयर पर बैठते हैं, तो चेयर पर बैठने का तरीका क्या होता है कि जब हम चेयर पर बैठते हैं तो हम चेयर को एक्चुअली पीछे की ओर पुश लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो चेयर भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो इस तरह हम चेयर पर अगर बैठे हुए हैं, उठना चाहते हैं, तो न्यूटन के 3rd law से आप ये प्रोसेस प्रक्रिया को करते हैं। तो आप डे टू डे लाइफ में बहुत जगह आप इन नियमों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये जो हमारा उठने का, चलने का प्रोसेस क्या है, उठने का प्रोसेस क्या है, इसमें कौन सा फर्स्ट लॉ लगता है कि सेकंड लॉ लगता है। तो जो न्यूटन के 3rd law का जो नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप अगर चेयर पर बैठे हैं और उठना चाहते हैं तो अपनी चेयर से कैसे उठेंगे, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके टीचर आपको सपोज गाल पे एक चाटा या थप्पड़ मारती है, तो आप ये मत सोचिए कि वही सिर्फ मार रही है, आपका गाल भी उनके हाथ को मार रहा है, तो चोट उनको भी लगती है। तो लेकिन होता क्या है कि जब हम हाथ से गाल पर टच करते हैं तो गाल पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा गाल भी उतनी ही फोर्स से लगाता है, लेकिन जो हाथ के जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी मोटी होती हैं, उनको इसलिए फील नहीं होता है। तो हर एक जगह आप देखेंगे कि अगर आप किसी अलमारी को पुश करते हैं तो अलमारी भी इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में आपको पुश करती है। इसका आप उदाहरण आप तब भी देख सकते हैं अगर रस्सा कस्सी हो रही है, तो एक पार्टी ये देखा होगा कि एक साइड के लोग एक तरफ रस्सा खींचते हैं, दूसरी तरफ की तरफ दूसरी तरफ रस्सा खींचते हैं, तो इसका मतलब जो ए टीम है वो बी पर फोर्स लगा रही है, बी वाली ए पर लगा रही है। पता कैसे लगता है कि दूसरी बॉडी भी उस पर फोर्स लगा रही है? तो एक अगर टीम रस्सा छोड़ दे तो क्या होता है, पूरी टीम गिर जाती है। तो इसका मतलब वहाँ से आपको सिद्ध हो जाता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ इस तरह हमारे उसमें ऑब्जेक्ट में काम करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, सपोज एक बॉल है और बॉल पर उसमें चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, अब बॉल कहाँ मूव करेगी? तो अब उसमें डिपेंड ये करेगा कि कौन सा फोर्स कितना है,
right.
मैग्नीट्यूड में जाता है। सपोज एक्स, अगर उसको मान लें एक्स वाई जेड और थीटा, कुछ ऐसे ही इसको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, अगर एक्स वाला फोर्स सबसे ज्यादा है रिजल्टेंट, तो बॉल एक्स की दिशा में मूव कर जाएगी। तो हमको सिस्टम में हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे फोर्स मूव करते हैं, जो जो उसका जो रिजल्टेंट होगा, जिस फोर्स का सबसे ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो इस तरह हम सिंपली इन तीनों नियमों को समझ सकते हैं, और डे टू डे लाइफ में आज भी ये नियम हमारे वैलिड हैं, और इनका प्रयोग हम जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस, मैकेनिक्स, सब जगह हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं
जी।
और इस दिशा से जब हम फिजिक्स में आप एक पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं या चीज़ों को समझते हैं, तो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है
जी।
तो गति के मूलतः यही तीन नियम हैं। पहला हमने बताया आपको, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम या इनर्सिया, जिसमें कहा जाता है कि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई चेंज, बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरा है कि एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, तो उतनी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगता है, इसी को न्यूटन के थर्ड लॉ बोलते हैं
जी।
अब इन नियमों से एक दूसरा आया मोमेंटम, जिसको मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की थी। तो अगर एक सिस्टम में, जैसे मैंने बोला, एक एक बॉल पर आपने कई सारे फोर्स लगे, तो एक वो बॉल एक सिस्टम बन गई, और उस सिस्टम में रिजल्टेंट कहाँ होगा, बॉल कहाँ जाएगी, तो उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो जब हम एक सिस्टम की बात करें तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो फाइनल ऑब्जेक्ट है उसमें हमने दो बॉल हैं आपस में टकराया, तो डिपेंड करता है वो कितनी देर तक टकराई, और टकराने के बाद वो वापस जाएंगी, तो सब कुछ बदलेगा उनका, लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा कि टकराने से पहले टकराने के बाद। तो उसमें आप प्रोसेस को देखिए कि दो बॉल हैं ए और बी, दोनों एक ही यू वेलोसिटी से, एक की दूसरी की वी वेलोसिटी है, दोनों आपस में पास में आई, और पास में आने के बाद टी समय तक वो आपस में कॉन्टेक्ट में रही, और टकराने के बाद वो फिर अपने पोजिशन पर वापस आ गई। तो अगर टकराने के पहले का मोमेंटम दोनों का और टकराने के बाद का मोमेंटम, वो दोनों कांस्टेंट रहेगा। तो सिस्टम में बोला जाता है कि एनर्जी कहाँ से आएगी, तो एनर्जी, एक एनर्जी अगर कहीं कम होती है तो दूसरी तरफ वो उसको कंपनसेट कर देती है। तो पूरा हमारा एक सिस्टम एक ही उससे काम करता है
जी।
तो इसी से एक डेफिनेशन आई है इम्पल्स, जिसे हिंदी में आवेग बोलते हैं। तो इसको इम्पल्स को बोलते हैं कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम इम्पल्स कहा जाता है। तो अगर फोर्स एफ है और वो डेल्टा टी समय तक लगाया जाता है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है कि आप जो पहले सपोज दोनों बॉल अलग अलग हैं और दो सेकंड तक वो आपस में कांटेक्ट में रहीं, तो डेल्टा टी का मतलब क्या है, इनिशियल में जीरो टाइम था और दो सेकंड पे रहीं, तो डेल्टा टी इक्वल टू टू हो गया, टू माइनस जीरो। तो ये जो टाइम कांटेक्ट था वो दो सेकंड का रहा, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। और फोर्स होता है चेंज इनटू मोमेंटम, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट समझने की बात है कि जो आपने जब फिजिक्स पढ़ा होगा, तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काम करता है। तो फोर्स में जैसे ने बताया कि जहाँ पर रिजल्टेंट ज़्यादा होगा बॉल वहीं मूव करेगी, तो इसमें मतलब है कि डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी तरह जैसे हम स्केलर की बात करें तो एक होता है स्पीड, वो स्पीड हो गया, दूसरा हो गया एक्सेलरेशन हो गया। अब इसमें आप बताइए कि सोच सकते हैं कि ये स्केलर है कि वेक्टर है। इसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही चीज़ हैं। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में डायरेक्शन का पता नहीं लग सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का पता लगता है किस दिशा में करना चाहते हैं। लेकिन दोनों चीज़ वो सेम है, लेकिन वेक्टर और स्केलर की वजह से उनके मेजरमेंट में चेंज आ जाता है। तो इस तरह जो इम्पल्स की हमारी ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि इसके कई सारे उदाहरण होते हैं जहाँ हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं, इम्पल्स की बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जब क्रिकेट में जब कोई बॉल फेंकते हैं, कैच लेते हैं प्लेयर, तो या विकेट कीपर को देखा होगा जब कोई चेंज होते हैं तो अपने ग्लव्स को पीछे की ओर ले जाते हैं, बॉल ले जाते हैं, तो बॉल बहुत फोर्स से आती है और इम्पैक्ट को कम करने के लिए हाथों में कम लगे तो वो क्या करते हैं कि अपने बॉल को हाथ जैसे आती है उसको पीछे की ओर ले जाते हैं। तो मतलब वो जो कॉन्टैक्ट टाइम है उसको बढ़ाते हैं। तो जब कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होती है, मैंने बताया मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो उनके हाथों पर इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा ये प्लेयर इसी का उपयोग करके ही अपने हाथों पे इम्पैक्ट को बचाते हैं। दूसरा, जब आप अगर बहुत सारे ऊंचाई से कूदते हैं तो आपने देखा होगा कि या तो पानी में कूदते हैं या कोई सैंड में कूदते हैं। आप कोई देखते हैं नीचे कोई चीज़, फर्श मजबूत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको डर लगता है कि आप गिरेंगे तो चोट लगेगी। अगर वहाँ सैंड पड़ी हो तो आप कूद जाएंगे कितनी भी ऊंचाई से। तो वहाँ भी ऐसा ही होता है कि जब आप ऊपर से कूदते हैं, जब आप टच करते हैं तो आप सैंड के अंदर धस जाते हैं। तो धसने का मतलब आप कॉन्टैक्ट टाइम को बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, इसीलिए जाके वहाँ पर हम रुक जाते हैं। तो उसका कॉन्टैक्ट टाइम को करने के लिए हम इन नियमों का ही प्रयोग करते हैं। मैं आप लोग आपको ये जो व्यवहारिक वो है जहाँ इसके एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, उनको ज़्यादा बताना चाहता हूँ जिससे कि ये आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें और जब आप कहीं फील्ड में जाएं उनको कोरिलेट भी कर सकें कि यहाँ पर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है या सेकंड लॉ लग रहा है या थर्ड लॉ लग रहा है। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपके जो बुक है उसमें भी कई सारे एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि एक उसमें रिकॉयल ऑफ गन का एग्जाम्पल दिया गया है कि जब आप बंदूक चलाते हैं तो जो बुलेट आगे की ओर जाती है और वही जो बंदूक है वो आपको पीछे की ओर धक्का मारती है। इसीलिए जो भी गन चलाते हैं तो वो साइड में उसको कस के पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वो पीछे गिर जाएंगे। तो इतने फोर्स से आगे निकलती है तो गन और वो पीछे की ओर, आपने देखा न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से वो पीछे की ओर मूव करती है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम को हमें बराबर रखने के लिए हम उसमें उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वी वेलोसिटी है गन की बुलेट की, तो गन का जो पीछे का हिस्सा है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा पीछे की ओर, तो वो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कॉलिजन का एक एग्जांपल दिया गया है कि जब दो चीज़ें आपस में कोलाइड करती हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर वी है, मास आपको पता है, तो आप सेकंड की वेलोसिटी और वो टकराने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं
जी।
इनको सिंपल में एग्जांपल में आपने बहुत सारे मूवी में भी दिया देखा होगा, जब ट्रेन के दो डिब्बे टकराते हैं तो टकराने के बाद एक आगे की ओर जाता है एक पीछे की ओर जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक वेलोसिटी से आपस में टकराते हैं दोनों डिब्बे एक साथ चलते हैं
जी।
तो आप वहाँ पर भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो सब उनकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी लेबोरेटरी में जहाँ साइंटिफिक रिसर्च होती है तो वहाँ पर भी जैसे अर्थक्वेक आया तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम बिल्डिंग को हिलाया जाता है, वहाँ पर हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि एक धक्का मारा और सपोज़ ये 4.5 या 5 का एक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लाने की कोशिश की जाती है, और फिर हम देखते हैं कि उसमें कितनी दरारें आई, कहाँ पर उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही हम देख लेते हैं कि उसका अब टकराने के पहले वेलोसिटी क्या है, बाद की क्या है, और इम्पैक्ट के बारे में पता चल जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा जो बहुत सारे रॉकेट आज के सेटेलाइट हम जब छोड़ते हैं तो रॉकेट के माध्यम से उनको छोड़ा जाता है, तो रॉकेट में जो फ्यूल टैंक होता है वो नीचे की ओर फ्यूल को फेंकता है, तो उसमें बहुत एनर्जी के साथ में वो फोर्स लगाता है जिससे कि ऊपरी हिस्सा उतने की फोर्स के साथ ऊपर की ओर उठता है। तो ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। और यहाँ पर भी अगर दो बॉडी, क्योंकि एक बॉडी से फ्यूल बाहर की ओर आ रहा है तो उसमें से लॉस हो रहा है कुछ, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा कि एक वेलोसिटी से निकल रहा है तो उतने ही फोर्स से वो आगे की ओर जाएगा। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ही सपोर्ट करता है। इसी तरह जो एक्सप्लोजन ऑफ बम, कहीं बम का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा या कहीं जो दो टुकड़ों में कोई चीज़ टूटती है, वहाँ भी कंजर्वेशन मूवमेंट होगा। जो आपके एग्जांपल इस बुक्स में आपके दिए गए हैं ये इन्हीं को सपोर्ट करते हैं। और इक्विलिब्रियम ऑफ करंट फोर्सेस मैंने आपको यहाँ पर जो आपके चैप्टर में दिया गया है इसमें भी हमने बताया कि अगर एक बॉडी पे कई सारे फोर्स लगते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा उस ओर वो चीज़ गति करेगी।